ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। नेकपा सचिवालय बैठक ने किया दो अध्यक्षों का कार्य विभाजन। सरकार संचालन की जिम्मेदारी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को और पार्टी संचालन की जिम्मेदारी अध्यक्ष प्रचंड को देने का निर्णय। न्याय परिषद ने किया उच्च अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 15 लोगों का नाम सिफारिश। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय की बैठक ने अध्यक्ष द्वे का कार्य विभाजन किया है। प्रधानमंत्री निवास बालोटार में हुई बैठक ने अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सरकार संचालन की जिम्मेदारी और दूसरे अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पार्टी संचालन की जिम्मेदारी दी है। बैठक ने अध्यक्ष द्वे की सीनियरिटी कायम करते हुए प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल कायम रहने तक अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा ही सरकार संचालन का नेतृत्व करने का निर्णय किया है। ये जानकारी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी है। साथ ही बैठक ने पार्टी और सरकार संचालन अध्यक्ष द्वे बीच की आपसी समझदारी में करने, पार्टी संचालन की वैधानिक व्यवस्था और पार्टी कमेटी का प्रभावकारी रूप से क्रियान्वयन करने का निर्णय भी किया है। प्रवक्ता श्रेष्ठ ने कहा कि मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन होगा और इसका ऐलान प्रधानमंत्री जल्द ही करेंगे। न्याय परिषद ने उच्च अदालत के 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम सिफारिश किया है। प्रधान न्यायाधीश चोलिंद्र शमशेर जबरा की अध्यक्षता में आज हुई परिषद की बैठक ने जिला न्यायाधीश से 6, सरकारी वकील से 1 और कानून व्यवसाय की ओर से 8 मिलाकर कुल 15 लोगों का नाम सिफारिश किया है। ये जानकारी परिषद की प्रवक्ता मान बहादुर कार्की ने दी है। जिला न्यायाधीशों से उच्च अदालत के न्यायाधीश पद के लिए सिफारिश हुए न्यायाधीशों में किरण कुमार पोखरेल को उच्च अदालत विराटनगर, मुरारी बाबू श्रेष्ठ को उच्च अदालत सुर्खेत, जुमला इजलास से सुदर्शन राज पांडे को उच्च अदालत पोखरा, बागनू इजलास, दीपेंद्र अधिकारी को उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास, रमेश राज पोखरेल को उच्च अदालत जनकपुर, वीरगंज इजलास और नरेश्वर भंडारी को उच्च अदालत विराटनगर में शामिल किया गया है। इसी तरह उच्च अदालत के न्यायाधीशों के लिए सरकारी वकील गीता प्रसाद तिमसिना को उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास में नियुक्ति के लिए सिफारिश किया गया है। अधिवक्ता से उच्च अदालत के न्यायाधीश पर सिफारिश होने वालों में भोजपुर के मिलन कुमार राय को उच्च अदालत दीपायल, चितवन के राजू राम सिलवाल को उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुंगा इजलास, डोटी की मरीना श्रेष्ठ को उच्च अदालत तुलसीपुर और मोरंग की मीना गौतम को उच्च अदालत पाटन, चितवन के सोमकांत मैनाली को उच्च अदालत विराटनगर धनकुटा इजलास में नियुक्ति के लिए सिफारिश किया गया है। इसी तरह भोजपुर के देश बहादुर कार्की को उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास सुनसरी की रेखा थापा पांडे को उच्च अदालत पाटन और सप्तरी के किरण कुमारी गुप्ता सप्तरी को उच्च अदालत पोखरा में नियुक्ति के लिए सिफारिश किया गया है। निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा और स्थानीय तहों में रिक्त पदों के लिए इसी मार्गशीर्ष 14 गते होने वाले उपचुनाव की मतपत्र ढुवाई शुरू हुई है। उपचुनाव के लिए मतपत्र छापने का काम पूरा होने के साथ ही आज से मतपत्र और मतदाता परिचय पत्र की ढुवाई शुरू होने की जानकारी निर्वाचन आयुक्त नरेंद्र दहाल ने पत्रकारों को दी है। उपचुनाव के लिए आयोग कल से मार्गशीर्ष 11 गते तक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन करेगा और इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक वार्डों में 2 लोगों के दर से मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाई जा चुकी है। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि सरकार एक लौटी तरीके से आगे बढ़ रही है। नेपाल प्रेस यूनियन द्वारा आज धनकुटा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता पौडेल ने कहा कि राज्य के संवैधानिक आयोग को भी सरकार अपने अनुकूल चला रही है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री डॉ शशांक कोइराला ने कहा कि नेपाल का लिपुलेख और कालापानी तत्काल ही भारत को वापस करना होगा। मोरंग के विराटनगर विमानस्थल पर आज संचार कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए महामंत्री डॉ कोइराला ने कहा कि नेपाल के भूभाग को अपने नक्श में दिखाकर भारत ने गलत किया है। शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्तियाक रायन ने कहा कि कालापानी और लिपुलेख नेपाल के ही भूभाग हैं, इसलिए हर हालत में सरकार इसे वापस लाकर ही छोड़ेगी। आज पाके के नेपालगंज में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री रायन ने कहा कि कूटनीतिक वार्ता और विचार विमर्श के जरिए कालापानी और लिपुलेख वापस लाया जाएगा। नेपाल में बच्चों की हालत में सुधार आया है, ऐसा एक रिपोर्ट में सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिवेदन पेश किया गया, जिसमें बाल विकास, बाल सहभागिता, बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बाल अधिकार सुनिश्चित होने की बात सामने आई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं, समय व्यापारिक विश्राम का।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट ने कहा है कि बाल श्रम, बाध्यकारी श्रम तथा मानव तस्करी आदि समस्याओं का अंत करने के लिए नेपाल पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री बिष्ट ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य के कर्णधार हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा है कि देश में आर्थिक विकास करना हमेशा ही सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा और जर्मनी के वामपंथी दल डी लिंक के बीच सहकार्य करने संबंधी समझदारी पत्र को हस्तांतरण करने के उद्देश्य से काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रवक्ता श्रेष्ठ ने बताया कि सरकार ने आर्थिक विकास को पहली प्राथमिकता में रखने का मुख्य कारण समाजवाद तक पहुंचने के लिए आधारभूत तैयारी करना है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के नवनियुक्त सचिव दीपक सुबेदी ने आज मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण पश्चात मंत्रालय एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सचिव सुबेदी ने सभी से सरकार की नीति एवं नियमों को अनुसार काम करने का निर्देशन दिया है। गौरतलब है कि सचिव सुबेदी इससे पहले प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सचिव के पद पर एक वर्ष तक काम कर चुके हैं। गोदाम में रखे रासायनिक खाद के अपचलन के आरोप में सॉल्ट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड अंचल कार्यालय विराटनगर के प्रमुख नवीन चंद्र झा सहित 3 लोगों के विरुद्ध आज विशेष अदालत में आरोप पत्र दर्ज किया गया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने झा सहित भंडार प्रमुख दिलचंद्र झा और जूनियर सहायक खगेन्द्र बसनेत से 19 लाख से ज्यादा रासायनिक खाद अपचलन करने बिक्री वितरण करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इसकी जानकारी आयोग के प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके कार्यकाल ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार के गोटाभाया राजपक्षे से हारने पर यह कदम उठाया है। वहीं ANI ने श्रीलंका मीडिया के हवाले से खबर दी है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे अपने भाई महिंद्र राजपक्षे का नाम प्रधानमंत्री के रूप में नामांकित किया है। एक विशेष वक्तव्य में प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उन्होंने मंगलवार को राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात की और श्रीलंका के संसद के भविष्य पर चर्चा की। ये जानकारी कोलंबो गैजेट समाचार पत्र ने दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पास अभी भी संसद में बहुमत है। राष्ट्रपति चुनाव में राजपक्षे को दिए गए जनादेश का सम्मान करते हुए पद छोड़ने का फैसला किया गया है। राजपक्षे के शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उन्हें पद छोड़ने और सरकार के विपरीत खेमे को सौंपने का दबाव था। राष्ट्रपति चुनाव में राजपक्षे ने विक्रमसिंघे के डिप्टी साजिश प्रेमदास को हराया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार एजेंसी ने युद्ध अपराध के मामले में 3 अमेरिकी सैनिकों की सजा माफ की को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते सप्ताह 2 सैन्य अधिकारियों को माफी दे दी थी, जबकि तीसरे के डिमोशन आदेश का पलट दिया था। मीडिया में आई खबरों के अनुसार लेफ्टिनेंट क्लाइंट लॉरेंस को 2013 में निहत्थे अफगान नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने के मामले में 20 साल जेल की सजा मिली थी। गत शुक्रवार को लॉरेंस की पूरी सजा माफ कर दी गई। मेजर मैथ्यू गोल्डस्टीन पर 2010 में एक निहत्थे अफगान नागरिक को मौत के घाट उतारने का आरोप है। इस मामले में मैथ्यू पर अगले साल फरवरी में मुकदमा शुरू होने वाला था, जबकि सेना के एक अन्य अधिकारी एडवर्ड गैलगर पर इराक में एक बंदर की हत्या का आरोप था। इस मामले में एडवर्ड को बरी कर दिया गया था, लेकिन उनका डिमोशन कर दिया गया था। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.2 और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। नेकपा सचिवालय बैठक ने किया 2 अध्यक्षों का कार्य विभाजन। सरकार संचालन की जिम्मेदारी अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को और पार्टी संचालन की जिम्मेदारी अध्यक्ष प्रचंड को देने का निर्णय। न्याय परिषद ने किया उच्च अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 15 लोगों का नाम सिफारिश और श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।